शांति। अपने 55 वर्षों के विशाल अनुभव के आधार पर आज आपका भी संबंध परमात्मा से जोड़ने हेतु और राज्यों का आधार एवं विधि सरल शब्दों में संबोधन करने हेतु हमारे मध्य आदरणीय शीलू बहन जी पधारे हैं। आप सभी महान आत्माओं से हमारा नम्र अनुरोध है, एक हाथ के ताली से आप शीलू बहन जी का भी स्वागत करेंगे। जैसे आपका नाम है शीलू बहन जी, वैसा आपका जीवन है। आप सौम्यता, मधुरता एवं शील के प्रतीक है, संयम एवं नियम की देवी है, योग की गहन अनुभूतियों की पूंजी आपके पास है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा आपने अपने जीवन में सही विधि विधान से अपनाया है और आप सबको एक खुश खबरी सुनाते हैं। हेडक्वार्टर्स में राजयोग शिविरों के आप सबसे पहले निमित्त वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, जिनके निर्देशन में राजयोग शिविरों का आरंभ हुआ और मीडिया की सेवा शुरुआत हुई। तो इसलिए करतल ध्वनि से आप शीलू बहन जी का भी सम्मान करेंगे। और शीलू बहन जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलियां फूलों को मुस्कुराना सिखाती है, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलियां फूलों को मुस्कुराना सिखाती है, आदरणीय शीलू दीदी सभी को राज्यों के द्वारा जीवन जीने की कला सिखाती है। आदरणीय शीलू बहन जी राज्यों के द्वारा जीवन जीने की कला सिखाती हैं। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय शीलू बहन जी से राज्योग का आधार एवं विधि इस विषय पर संबोधन करें। आदरणीय शीलू बहन जी।
ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक मधुर गीत सुना, ज्योति बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर ले तू, हो जा मन में मगन। वास्तव में यही राजयोग है, ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन, जिससे परमानंद की अनुभूति होती है, मन ईश्वर में मगन हो जाता है। तो क्या है राजयोग का आधार और उसकी विधि, कैसे मन मग्न हो जाए, कैसे परमात्मा की याद से परमानंद की अनुभूति हो, कैसे ज्योति बिंदु परमात्मा से आत्मा का मिलन हो, उसका आधार क्या है, विधि क्या है, वो अभी हम देखेंगे। वैसे तो आज दुनिया में कई प्रकार की योग की प्रैक्टिस है, लेकिन योग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। योग माना जोड़, किसी का भी किसी चीज से जोड़, वो योग है। जब ये जोड़ ईश्वर के साथ हो जाता है वो राजयोग है। तो ईश्वर के साथ कैसे जुड़े, स्थूल चीजों को हम जोड़ते हैं, गणित करते हैं, अरिथमेटिक में हिसाब करते हैं, तो गिनती करते हैं और लास्ट में लिखते हैं कुल योग, टोटल सम, क्योंकि जोड़ा, वो भी एक योग है। वस्तुओं को वस्तुओं से जोड़ते हैं, एक प्रयोगशाला में भी प्रयोग होता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए और बी का योग होने से सी पैदा होता है, बनता है। बिजली घर से योग है तो बिजली आती है, रेडियो स्टेशन से हम ट्यूनिंग करते हैं तो रेडियो की आवाज सुनाई देती है, ये सब योग है। मन से किसी को याद करते वो भी योग है, क्योंकि मन एक ऊर्जा का काम करता है, ऐसी वो एनर्जी है जिससे मिलन का अनुभव होता है। तो राजयोग भी आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जिसमें मन परमात्मा में लगता है और परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन जब भी हम ईश्वर में मन लगाने की कोशिश करते हैं तो यही शिकायत होती है कि मन लगता नहीं। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा गीता में, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन कहता है मन तो बेलगाम घोड़ा है, हवा से भी तेज दौड़ता है, कैसे लगाएं? तो भगवान ने उसको कुछ टिप्स दिए कैसे मन को मेरे में लगाओ। अब मैं उसमें तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मन परमात्मा में कैसे लगे उसका आधार और विधि को हमें समझना होगा। मेडिटेशन सीखने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, समझते हैं मेडिटेशन से मन शांत होता है, शरीर के कई रोगों का निदान होता है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं मेडिटेशन करो। पर मेडिटेशन है क्या चीज? कई लोग समझते मेडिटेशन माना अपने मन के विचारों को स्टॉप करना, सोचना ही नहीं, ब्लैंक बन जाना, शून्य बन जाना। वास्तव में केवल शून्य बन जाना ये मेडिटेशन नहीं है। और देखा जाए तो मन तो शून्य बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मन का काम ही सोचना है। मन घोड़े की तरह है, उसको काम तो देना होगा ना, बिठाएंगे थोड़ी, कहेंगे शांत बैठ जाओ, ये तो होगा नहीं घोड़े से। इसीलिए घोड़े को काम देना है, उसको दिशा देनी है। मन एक चंचल बच्चे की तरह भी है, चंचल बच्चे को हम बांध नहीं सकते हैं, लेकिन उसको बिजी रखना है। जितना उसको बिजी रखेंगे उतना वो चंचलता भी नहीं करेगा और उसकी रचनात्मकता क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो मन भी एक चंचल बच्चे की तरह जरूर है, लेकिन उसको काम देना है। इसीलिए कहा खाली मन शैतान का घर, खाली रखेंगे तो शैतान का घर बन जाएगा। काम भी देना है तो मन तो बहुत बड़ी शक्ति है। इस मन को जितना हम क्रिएटिव बनाते हैं उतने बहुत अनुभव कर सकते हैं। अब वो एक अलग विषय है, लेकिन मन को दमन करना ये राजयोग नहीं है। दमन करने से अमन करना ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन सुमन करके अमन करना। दमन माना उसको सप्रेस करना और सुमन करना माना उसको सुंदर विचार देना। सुमन सुंदर मन, ऐसा सुंदर विचार मन को देना है जिससे मन में शांति आ जाए। क्योंकि यही कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वही अनुभूति होगी, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो वही अनुभूति होगी। इसीलिए एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आप शांति का चिंतन करेंगे तो शांति का अनुभव करेंगे। ये तो हो नहीं सकता है कि मन में अशांति के विचार हैं, बहुत नेगेटिव विचार आप सोचे कि हमको शांति का अनुभव हो, होगा ही नहीं। इसलिए जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो मन को ब्रेक लगा के शून्य करने का लक्ष्य मेडिटेशन नहीं है, पर क्या सोचना है वो जरूर लक्ष्य दिया जाता है। फिर कई कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए क्या क्या सोचना है, तो क्या फोर्स देना है मन को, तुमको यही सोचना है यही सोचना है। हम कहते हैं फोर्स भी नहीं देना है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को कैसे याद करता है, कोई फोर्स थोड़ी देता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करते समय अपने टीचर को भी याद करता है, टीचर ने हमें क्या पढ़ाया। एक दोस्त को याद करता है। तो जहाँ रिलेशनशिप है, संबंध है, वहाँ कोई फोर्स देने की तो बात ही नहीं है ना। तो परमात्मा के साथ भी हमारे सर्व संबंध है, तो उन संबंधों के आधार पर मन तो नेचुरली उनको याद कर सकता है, इसलिए फोर्स देने की बात नहीं है। तो कई कहते हैं कि पर मेरा मन इतना ज्यादा चंचल है, इतनी उसकी स्पीड है, इतना तेज दौड़ता है कि हम मन को स्पीड वो रोक सकते ही नहीं है। तो हम कहते हैं क्यों स्पीड ज्यादा होती है विचारों की, क्योंकि नेगेटिविटी में ज्यादा स्पीड होती है विचारों की। अगर आप पॉजिटिव विचार मन में लाते हैं तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतने विचारों की स्पीड बढ़ती जाएगी। आप आजमा के देखना, अभी वो भी सब्जेक्ट ये अभी नहीं है, सवेरे आपका ये सब्जेक्ट हुआ है पॉजिटिव कैसे सोचें। इसीलिए पॉजिटिव सोच अगर मेरे मन में होगा, वो भी आत्मचिंतन होगा, परमात्मा चिंतन होगा, अपने गुणों का चिंतन होगा, किसी की अच्छाइयों का चिंतन होगा और ईश्वर का चिंतन होगा, परमात्मा के गुणों का चिंतन होगा, तो मन तो अपने आप कम सोचेगा। इसलिए देखो लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, ताकि अच्छी अच्छी बातें कानों से जाए और मन वो सोचे। कीर्तन का मतलब ही क्या है, कीर्ति गाना, ईश्वर की कीर्ति गाना, ईश्वर की स्तुति गाना। क्यों स्तुति गाना जरूरी है, क्योंकि उससे परमात्मा के प्रति प्यार उत्पन्न होता है। जैसे किसी के गुणों का चिंतन करते हैं तो उससे प्यार उत्पन्न होता है, उससे प्यार अनुभव होता है, क्योंकि गुणों का चिंतन किया। किसी के अवगुणों का चिंतन करते हैं तो उसे नफरत की के वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। या ईश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं तो मन की स्पीड तो कम हो ही जाएगी। इसीलिए मन बहुत स्पीडी है, बहुत तेज संकल्प होते हैं, इसलिए हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, ये भी वास्तव में कोई बहाना नहीं है। फिर कई कहते हैं मन, हम चाहते तो हैं लेकिन हम पद्मासन करके नहीं बैठ सकते हैं, हमारे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, पद्मासन कैसे करेंगे, मेडिटेशन के लिए तो पद्मासन में बैठना होता। हम कहते हैं वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन पद्म जैसा जीवन तो बना सकते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रह सकता है, तो हम कम से कम कमल के फूल से ये तो एक गुण लें कि चारों ओर कीचड़ है तो भी कमल पर उसका कोई असर नहीं है, वो उससे न्यारा होता है। तो हम इस संसार में भी रहें पर संसार हमारे में न रहे। इसीलिए भगवान ने दो शब्द दिए अर्जुन को, मन को कैसे प्रभु में लगाने के लिए, वो दो शब्द दिए वैराग्य और अभ्यास। इससे मन ईश्वर में लग सकता है, लेकिन जब वैराग्य शब्द सुनते हैं लोग तो वो घबरा जाते हैं, समझते हैं वैराग्य का मतलब हमको क्या सन्यासी बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ना भी कुछ नहीं है, अर्जुन को भगवान ने छोड़ने के लिए नहीं कहा, कर्म करने लिए प्रेरणा दी, कर्म योग सिखाया, लेकिन कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, एक बहुत बड़ा कर्म योग का सिद्धांत है। इसीलिए कर्म को प्रधानता जरूर देते हैं, छोड़ते नहीं है कर्म को, कोई सन्यासी नहीं बन जाते हैं, लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं संसार में रहो पर संसार आप में न रहे। कर्म करो पर फल की चिंता से दूर, बस अच्छे कर्म करो। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी और पूछ, नेक काम करने लिए पूछना भी नहीं होता है, क्योंकि जितना पूछेंगे उतना समय चला जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। और नेक काम करने के लिए बताने की भी जरूरत नहीं। अगर आपका दायां हाथ दान करता है तो बाएं को पता भी नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त दान महाकल्याण माना जाता है। न वर्णन करना है, न दिखावा करना है, न फल की इच्छा रखनी है, बस अच्छे नेक काम करते जाओ, फल अपने आप ईश्वर देगा। ये कितनी ऊंची धारणा है, इसको ही कहते हैं संसार में रहो पर संसार आप में न रहे। इसलिए अगर हम किसी भी पोस्चर में बैठते हैं, ऐसे बैठ करके भी, कुर्सी पर, सोफा पर बैठ के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खास पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कोई कहते हैं हम मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे घर का जो वातावरण है ना, उस वहाँ बहुत आवाज़ है तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। बहुत आवाज़ है तो कैसे करें, उसके लिए तो शांत स्थान चाहिए। हम कहते हैं वो भी अगर नहीं मिलता है कोई हर्जा नहीं। आप मंदिर में जाते हैं, इतने घंट घड़ियाल ढोल बजते रहते हैं, कीर्तन होते रहते हैं, झांझ बजते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन कितना शांत होता है। आवाज तो कितना होता है मंदिर में, पर फिर भी मन शांत रहता है। और एक शमशान घाट में जाएं जहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई भी नहीं होगा शायद, लेकिन वहाँ बेचैन हो जाएंगे, निकले यहाँ से, आवाज तो नहीं है वहाँ, पर आवाज नहीं है इसका मतलब कि वहाँ मेडिटेशन होगा ये जरूरी नहीं है। और मंदिर में आवाज होने के बावजूद भी बहुत शांति का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बाहर की आवाज का कोई विघ्न हमारे मेडिटेशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि अंतर में कुछ और अनहद नाद हम अनुभव कर सकते हैं, तो बाहर का आवाज अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए ये भी कोई बहाना नहीं दे सकता कि आवाज बहुत है। कोई फिर कहते हैं कि क्या हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कई ऐसे भी मेडिटेशन सिखाते हैं जिसमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कैसे अंदर जाता है, कैसे उसको रोकते हैं, फिर कैसे बाहर निकालते हैं, और इसी को मेडिटेशन समझते इससे मन शांत रहता है। पर श्वास तो एक नेचुरल चीज है, वो तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो श्वास बहुत जल्दी चलता है, और अगर नेचुरल है, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल श्वास चलता है। अगर हेल्दी लंग्स है तो हमें कोई उसका विशेष ध्यान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्राणायाम करते हैं तो उसमें एक मदद मिलती है शरीर को, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचता है, पर नेचुरल रूप में भी तो ऑक्सीजन तो जा ही रहा है। इसीलिए श्वास पर ध्यान करना, उसी को मेडिटेशन कहा जाए, ये नहीं है। मेडिटेशन तो उनसे बहुत ऊंची चीज है। फिर कई कहते हैं कि क्या मेडिटेशन करने लिए हमें आंखें बंद करनी होगी। आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन तो बहुत दौड़ता है, तो हम कहते हैं आंखें बंद करते, इसीलिए मन का जो दायरा है ना, वो बहुत अनलिमिटेड हो जाता है। किसके सामने है तो कम से कम उस पर ध्यान तो जाता है, आंखें खुली है तो। अगर आंखें बंद कर दी तो मन तो और भी बेलगाम घोड़ा हो जाएगा। तो हम कहते भले आंखें भी खुली रहे, हर्जा नहीं, और चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आप कर सकते हो, क्योंकि एक जगह बैठ करके भी करने की जरूरत नहीं। आप किसी को याद करते हो तो खास बैठ कर थोड़ी करते हो। पत्नी घर में काम भी करेगी, पर ये थोड़ी भूल जाएगी मैं किसकी पत्नी हूँ, मेरे कितने बच्चे, ये भूल थोड़ी सकती है। काम तो कुछ भी करती रहेगी, पर अंदर में ये भूल तो नहीं सकती है। इसीलिए आंखें बंद करके ही बैठना है, ये भी जरूरी नहीं है। और ये आंखें बंद करके बैठेंगे तो कई बार अनुभव होता है कि परमात्मा में तो मन नहीं लगता लेकिन नींद आने लगती है, क्योंकि सोचते मन शांत करके बैठना है तो नींद ही आ जाएगी, क्योंकि जब बहुत सोच चलती तो नींद नहीं आती है, और यहाँ सोच को हम बंद कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं तो नींद ही आएगी, परमात्मा में तो मन नहीं लगेगा। इसीलिए आंखें खुली भी रहे तो भी मन परमात्मा में लग सकता है, क्योंकि ये आंखें तो चर्म चक्षु इस दुनिया को देखती है लेकिन मन की आंख परमात्मा को देखती है। तो जब मन की आंख परमात्मा को देखे तो ये आंखें भले इसको देखे हर्जा क्या है, अंतर की आंख तो ईश्वर को देख रही है, इसीलिए बंद करने की भी जरूरत नहीं है। फिर कोई कहते हैं कि मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बोरिंग लगता है, हम ऊब जाते हैं। क्यों ऊब जाते हैं? क्योंकि उनको एक मंत्र मिला हुआ है कि इस मंत्र का आपको जाप करना है, और एक ही वो मंत्र है और उसको बार 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 वो जाप तो करते रहते हैं लेकिन उसमें कोई रचनात्मकता तो नहीं है, और मुख को तो काम मिलता है जाप करने का, फिर हाथों को शायद काम मिले और उंगलियों से माला फेरते हैं तो उंगलियों को भी काम मिल जाता है, आंखों के सामने कोई मूर्ति रखते हैं चलो आंखों को भी काम मिल जाता है, लेकिन मन को तो काम मिलता ही नहीं है, मन को काम चाहिए। इसीलिए कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है कि कर का मण का फेरत युग भया, हाथ के मण के फेरते फेरते युग बीत गए पर फिरा न मन का फेरा, मन का फेरा फिर भी नहीं फिरा, अब कर का मण का छोड़कर हाथ के जो मण के वो फिराते उसकी जरूरत नहीं, पर मन का मण का फेरो। तो मन का मण का कैसे फेरना है वो हमको राजयोग सिखाता है, क्या चिंतन मन में करना है वो राजयोग हमें सिखाता है। इसीलिए कभी बोर नहीं होंगे। मान लीजिए किसी को ओम नमो शिवाय का मंत्र मिला है और ये कहा जाता है कि आप इसका जाप करना 1,00,000 बार, अब वो जाप करने बैठता है तो समय पर तो 1,00,000 तो मुश्किल है, 100,000 ये 1,00,000 होता है, तो चलो हर वक्त वो 1,000 का जाप करता है, ओम नमो शिवाय 1,000 बार करता है मान लो, अब 100 बार उसको करना है तो जितनी बार करेगा फिर गिनती करता रहेगा कितना हुआ बाकी कितना है बाकी कितना है। तो शिव से तो योग लगा नहीं पर गिनती से जरूर योग लग जाता है क्योंकि इतना मैंने किया। इसीलिए जब हम कहते ओम नमो शिवाय इसका मतलब क्या है, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, ये है ओम नमो शिवाय का अर्थ। अब मैं कहने वाला कौन? आत्मा। तो जब तक वो आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक मैं अभिमान से हमने कह दिया मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक फलाना हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो ये मैं कहा तो शिव का ध्यान नहीं लगेगा। मैं बिजनेसमैन हूँ तो वो बिजनेस ही बुद्धि में आएगी, मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट्स और दवाइयाँ बीमारियाँ बस वही बुद्धि में आएगी, मैं एक माँ हूँ तो बच्चे याद आएंगे, पति याद आएगा, घर याद आएगा, गृहस्थी याद आएगी, पर मैं आत्मा हूँ ये मन में सोचा तब परमात्मा याद आएगा। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, पहले स्वयं को देखो। तो ओम नमो शिवाय मना मैं आत्मा शिव को नमः कर रही हूँ, फिर शिव को नमः करने लिए नम्रता चाहिए, अभिमान तो नहीं चलेगा क्योंकि वो शिव परमात्मा हमारा परम पिता है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। फिर उस शिव को हम पहचाने भी तो सही जिस शिव को हम नमः कर रहे हैं, तो पहले खुद को पहचानो फिर उसमें नम्रता लाओ और फिर शिव को पहचान करके उनसे संबंध जोड़ो, तब ये मंत्र सार्थक होगा। वो तो सब होता नहीं तो बोर हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर कहते नहीं नहीं मेडिटेशन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, ये तो जब बूढ़े हो जाएंगे ना, रिटायरमेंट ले लेंगे ना, तब ये करेंगे, देखेंगे अभी तो जवान है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, अभी दुनिया देखी कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ हमें देखना है। भले देखो, मना तो है नहीं, लेकिन ये विधि आ जाए, ये कला आ जाए कि सब कुछ करते हुए भी फंसे नहीं, यही तो मेडिटेशन सिखाता है। अगर ये कला हमें जीवन के आरंभ से आ जाए तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाए। कुछ भी छोड़ना नहीं है पर कहीं भी फंसना भी नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर से जरूर जोड़ना है क्योंकि उनसे शक्ति मिलेगी, कैसे हम नहीं फंसे। इसीलिए मेडिटेशन क्या है, स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही है कि व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर परफेक्शन है, आत्मा के अंदर वो परफेक्शन है। जैसे बताया कि हर आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। अब उस जो आत्मा इन गुणों की स्वरूप है, इन गुणों का चिंतन करके वो अनुभव करना, ये मेडिटेशन है। और इन इस चिंतन के द्वारा वो शक्ति प्राप्त करना, उसके लिए मन ईश्वर में लगे क्योंकि परमात्मा इन गुणों का स्रोत है, सोर्स है। इसीलिए कई कहते शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, शक्ति चाहिए अंदर जाओ। अंदर, अब अंदर का मतलब क्या है? अंदर को शरीर के अंदर की बात नहीं है। शरीर को काटते हैं तो क्या निकलता है? रक्त, पस, हड्डियां, पसलियां, यही शरीर की बात है। थोड़ी सी, थोड़ा सा कट हो जाता है, खून निकल आता है तुरंत, शांति प्रेम थोड़ी निकलता है। हा? तो शांति प्रेम अंदर है, ये कहाँ की बात है? ये आत्मा की चीज है, अर्थात अपने को आत्मा पहचानो। तो राजयोग क्या है? उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, परम पिता, परम आत्मा, जो निराकार ज्योति स्वरूप सदा शिव है, कल्याणकारी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उसमें मन की तार जोड़ना। और फिर राजयोग वो विधि भी सिखाता है जो सबसे ऊंची है। कई समझते हैं ईश्वर तक ही तो पहुंचना है, तो कई रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के, कई रास्ते हैं, कई प्रकार के मेडिटेशन है। लेकिन अगर जैसे माउंट आबू आपको पहुंचना है तो माउंट आबू पहुंचने के भी कई रास्ते हो सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ के भी कई लोग पहुंचे हैं। लेकिन जब से ये सड़क बनी है माउंट आबू जाने की, तो कौन सा पहाड़ों पर चढ़ के जाएगा? रोड इतना अच्छा है जो सहज पहुंच जाते आधे पौने घंटे के अंदर, नहीं तो पहाड़ चढ़ते रहो घंटों घंटों लग जाए, सारा दिन भी चला जाए, और आजकल तो समय किसके पास है। तो इसीलिए कम समय में ज्यादा प्राप्ति हम चाहते हैं तो राजयोग हमें वो सरल तरीका बताता है, वो सच्ची सहज विधि बताता है, शॉर्टकट बताता है, जिससे सहज हम अपने मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। और उससे जो प्राप्ति होती है वो भी सबसे ऊंची है। हम यही चाहते हैं, कईयों से पूछेंगे ना कि आप को जीवन में तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तो आप तो बहुत संतुष्ट होंगे अपने जीवन से, कहते बहन जी क्या बताएं, सब कुछ तो है, कोई कमी नहीं है, बस फिर भी शांति चाहिए, शांति। तो सबसे ऊंची प्राप्ति किसको कहेंगे? शांति। अब राजयोग में वो प्राप्ति तुरंत होती है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ, मुझे तो शांति चाहिए, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, चैलेंज है। परंतु अगर अपनी सोच को बदलेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, इस सृष्टि पर मेहमान हूँ और शांति के सागर परमात्मा की मैं संतान हूँ, इसलिए तीन बार ओम शांति कहलाया, ओम शांति 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 तीन बार कहते हैं शांति पाठ में, तो मेरा स्वभाव शांति है, मेरा धाम शांति का धाम है, मेरा पिता शांति का सागर है। अब जब ये चिंतन मन में आया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, ये भी चैलेंज है। बस सोच में परिवर्तन करना है, सोच, केवल सोच। तो शांति आपसे कितनी दूर है? केवल एक सोच की दूरी पर है, एक क्षण, एक सोच। इट इज ओनली वन थॉट अवे। और वो सोच कौन सी है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी और शांति के सागर परमात्मा की संतान। अब ये सोचने में आपको कितनी देर लगेगी? एक सेकंड। इसीलिए प्राप्ति भी सबसे ऊंची है, क्योंकि आत्मा को अपने गुणों की पहचान मिल जाती है, अपने पिता परमात्मा की पहचान मिल जाती है, और जैसे बच्चा अपने पिता से अधिकार महसूस करता है, ये आत्मा परमात्मा से इन गुणों का अधिकार अनुभव करती है, मांगना भी नहीं पड़ता है। अभी तक हम क्या करते थे? परमात्मा से शांति मांगते थे, हे प्रभु शांति दो, लेकिन अनुभव ये होता था कि शांति हमसे और दूर चली जाती। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे आपको एक सेकंड में शांति मिलेगी, अधिकारी हो आप, और मांगते मांगते युग बीत गए फिर भी शांति नहीं मिली। तो मांगो नहीं, आप अधिकारी हो। तो कैसे ये अधिकार अनुभव करेंगे वो हम देखेंगे। तो राजयोग माना जिसमें ज्ञान योग है, ज्ञान के आधार पर योग है। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा पिता परमात्मा है, कहाँ जाना है, क्यों आया हूँ, कैसे मिलना है, ये सारा अभी ज्ञान हमें मिल रहा है परमात्मा से, और उसी का मनन चिंतन करके मन को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो परमात्मा की याद उस मन में, स्वच्छ मन में टिकेगी। इसलिए ज्ञान के आधार पर योग है। फिर सहज योग है, कोई हट करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, तो ये सहज योग है। पिता को पाने के लिए क्या बच्चे को कष्ट करना पड़ता है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है पिता को याद करने लिए? नहीं, वो तो दौड़ करके पिता की गोद में बैठ जाएगा, इतना सहज है, पिता के गोद पर भी उसका पूरा अधिकार है। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको बताऊं। हम राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे, तब वो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। अब उसका पूरा परिवार वहीं रहता था, उसका पति, उसके बच्चे, उसके पोते दोते, बहुत बड़ा परिवार था। तो अब अपॉइंटमेंट तो हमको मिली थी, बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, तो आखिर हम मिलने पहुंचे। अब हम मिल ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं, तो उनका छोटा सा पोता होगा, दोता होगा, पता नहीं कौन था, पर छोटा बच्चा था, वो दौड़ दौड़ करके अपनी नानी या दादी की गोद में बैठ गया। अब उसको कौन रोक सकता है? उनका एडीसी भी नहीं रोक सकता, उनका सेक्रेटरी भी नहीं रोक सकता है, उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो अधिकार समझता है। तो मेरी नानी है, मेरी दादी है, वो प्रेसिडेंट है, ये थोड़ी बच्चा जानता है। तो हम भी किसके बच्चे हैं? हम तो परमात्मा के अधिकारी बच्चे हैं। हर जन्म में हमने परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कहकर के याद किया है। जन्म जन्म के संबंध है हमारे ईश्वर के साथ। जो देहधारी है उनके साथ तो एक जन्म का संबंध होगा। कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई भाई, कोई बहन, कोई मामा चाचा, अनेक संबंध है, लेकिन एक जन्म के संबंध है। और वो भी कर्मों अनुसार संबंध है, कर्मों का हिसाब किताब है जो इतने जो ये संबंध बनते हैं। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, वो संबंध भी पूरा हुआ। इतने तक ही संबंध था कर्मों के हिसाब किताब अनुसार। तो जब ये हमको समझ आती है कि परमात्मा के साथ तो हमारा कोई कर्मों अनुसार संबंध नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मात पिता बंधु सखा ये सब संबंध अपने कर्तव्यों के आधार से निभाए हैं, इसीलिए आत्मा उसको याद करती है। इसलिए ये सहज योग है और इसमें केवल मन और बुद्धि को लगाना है, शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। अगर आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, वो तो कोई बड़ी कोई मना बुरी बात नहीं है, वेरी गुड। लेकिन इसमें आप सोचे कि मन ईश्वर में लग जाएगा, वो बात नहीं है। आवश्यकता है कि मन को कैसे हम ईश्वर में लगाएं। शून्य भी नहीं बनाना है, सोच भी चले पर शांति का भी अनुभव हो, मन को रचनात्मक भी बनाना है। इसीलिए ये बुद्धि योग है, मन और बुद्धि, बुद्धि मन को दिशा दे और मन ईश्वर में लगे। अभी क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि इंद्रियां मन को दिशा दे रही है। जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती है, मन वहीं चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींच रहे हैं और मन चंचल बन जाता है। लेकिन जब बुद्धि मन को दिशा दे ईश्वर के तरफ, समझ के साथ संबंध जोड़े आत्मा उस परमात्मा से, तो मन कभी भटकेगा नहीं, उसमें खो जाएगा। इसलिए ये बुद्धि योग है। और बुद्धि योग होने के कारण कर्म योग भी है। कर्म को छोड़ना नहीं है, हाथों से कर्म करना है और मन बुद्धि से ईश्वर को याद करना है। इसलिए कहते कर कार डे दिल यार डे, कर अपना हाथों से काम करो पर दिल यार के पास हो, उस ईश्वर के पास हो जो सच्चा साथी है। तो कर्म को नहीं छोड़ना है, हाथों से कर्म करना है। इसलिए बहुत सुंदर ग्रंथ में आता है, करण करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ। ये भावनात्मक बात कितनी ऊंची है कि ईश्वर की शक्ति से ही ये सब हो रहा है, वो ही करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो परमात्मा की शक्ति से कर रहा है और वो कार्य ईश्वर की शक्ति से किया और फल के लिए उनको सौंप दिया। इसीलिए हम गीत भी गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में। कितना ये सुंदर भजन सब गाते होंगे। इसका मतलब क्या है? कर्म हम कर रहे हैं, अब इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो ईश्वर के हाथ में, आप क्यों चिंता करते हो? आप बस अपने नेक कर्म करो बस। पर नेक कर्म तब होंगे जब बुद्धि मन को दिशा देगी। अगर इंद्रियां मन को दिशा देगी तो नेक कर्म तो नहीं होंगे, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बुरे से बुरे काम भी कर लेंगे। इसीलिए ये कर्म योग है, कर्म हाथों से, मन बुद्धि ईश्वर में, और खुद को निमित्त समझ करके करना। दाता वो है, करण करावन वो, हार वो है। और फिर उतना ही जब परमात्मा से प्रेम है, उसी को भक्ति योग कहते हैं। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति का मतलब है प्रेम, ईश्वर से सच्ची लगन, ईश्वर से प्रेम। अभी जो स्थिति है वो प्रेम की नहीं है, ईश्वर के साथ स्वार्थ आ गया है। हम स्तुति गाते हैं ईश्वर की, बहुत महिमा गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, फिर गाते गाते कुछ मांग लेते हैं, भगवान दया करो, रहम करो, कृपा करो, शांति दो, शक्ति दो। तो मांग लेना ये तो भिखारी बनना है। इसीलिए कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो भिखारी बनते बनते ईश्वर से भी दूर हो गए, शांति से भी दूर हो गए, खुद से भी दूर हो गए। अब परमात्मा कहते हैं खुद को पहचानो, शांति तो आपका स्वभाव है और शांति का सागर आपका पिता है, शांति का धाम आपका अपना ही धाम है। कई लोग कहते हे भगवान बस उठा लो इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है। दुखी होकर के भगवान को कहते बस उठाओ, भगवान कहते दुखी होके क्यों कहते हो, मन से चले आओ मेरे परम धाम में। मन से चले आओ। अभी आप पंजाब से आए हैं, जहां से भी आए हैं, जिस शहर से आए हैं, जिस घर से आए हैं, मन से वहां जाने में आपको कितनी देर लगेगी, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। भले शरीर से यहाँ है, मन से तो जैसे आप वहाँ बैठे हो, ये भी अनुभव हो सकता है यहाँ बैठे बैठे भी। इसीलिए परमात्मा कहते सच्चा भक्ति योग है ईश्वर से प्रेम, और इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो जो परमात्मा के गुणों में खो जाओ। इसीलिए इसी प्रेम का गायन है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो विलीन माना प्रेम में खो जाना, और जहां ये सच्चा प्रेम है तो बुराइयों का संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है, कर्म का संन्यास नहीं करना है, क्योंकि ये बुराइयां ये भगवान ने हमें नहीं दी है। एक बहुत अच्छी बात किसने कही कि कई भगवान से सौदा करते हैं, और सौदे में क्या कहते हैं, हे भगवान तो मेरा ये काम कर देना तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। ये सौदा करने की कोशिश करते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब सोचने की बात है, जो 100 रुपए आप चढ़ाएंगे वो किसका है। आरती में तो हमने यही कहा, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, कितना प्यार से हम आरती गाते हैं। तो जब ये तन भी उनका, मन भी उनका, धन भी उनका, ये 100 रुपया प्रसाद, क्या बड़ी बात है, ये धन भी 100 भी तो उनका ही तो है, आपका थोड़ी है, आपका है वो जो आप 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, और इससे परमात्मा खुश हो जाएगा। तो कोई कहे अच्छा मैं अपना तन अर्पित करता हूँ, अभी तन भी तो कहेंगे ईश्वर का ही है, अर्पित क्या कर रहे हो। कोई कहे मन अर्पित करता हूँ, मन भी क्या है, वो भी ईश्वर का ही है, ये तन मन धन सब है तेरा। तो वो दो ईश्वर को जो ईश्वर ने तुमको दिया नहीं है। ईश्वर ने क्रोध नहीं दिया, ईर्ष्या नहीं दी, आसक्ति नहीं दी, लोभ नहीं दिया, अहंकार नहीं दिया, ये बुराइयों का संन्यास करो, ये त्याग करो, भगवान ये त्याग चाहते हैं। और जो ये तन मन धन है ये ईश्वर का समझ करके चलो, ट्रस्टी होकर के इनका रहो, ये आपको ईश्वर ने अमानत दी है। पर जो भगवान ने नहीं दिया है वो दान भगवान आपसे मांगते हैं। ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और कई विकार उनके बाल बच्चे हैं, ये भगवान हमसे चाहते हैं। अब ये त्याग कोई कर सके तो बहुत ऊंचा हो जाए, ये संन्यास परमात्मा चाहते हैं, घर गृहस्थी का नहीं। फिर जब हम अब सचमुच इन बुराइयों का संन्यास करते हैं तो फिर हमारा जीवन कैसा बन जाता है, वो समत्व योग, योग ऑफ बैलेंस, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, हर परिस्थिति में हम एक समत्वता बना सकते हैं। एक बैलेंस रख सकते हैं। जैसे एक बैलेंस होता है, तराजू होती है, उसमें कांटा ऊपर की ओर चाहिए, यानी मन ईश्वर की तरफ जाइए चाहिए, और डंडी होती है वो सीधी होती है, माना अनबायस्ड। ये नहीं किसी ने मेरी महिमा की तो वो बहुत अच्छा है, किसने मेरी ग्लानी की तो वो बहुत बुरा है, किसने महिमा की तो बहुत खुश हुए, ग्लानी की तो अपमान महसूस हुआ। नहीं, चाहे महिमा करे चाहे ग्लानी करे, मेरी मन की स्थिति उतनी ही एक जैसी हो। ये कहते हैं, इसको कहते हैं समत्वता, योग ऑफ बैलेंस। और फिर पलड़ों में क्या हो, एक पलड़े में वजन होता है और दूसरे पलड़े में कोई चीज डालते, उसका केवल वजन बताता है तराजू। तो बुद्धि एक तराजू की तरह है, वो वजन बताती है कि ये मूल्यों को वजन दो, ये मूल्य जीवन में अपनाओ। इसीलिए कहा जाता है अगर जीवन में मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है, अगर जीवन से मूल्य चले गए तो जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए कबीर ने बहुत सुंदर कहा कि मानव जीवन हीरे तुल्य है, पर कहीं इसको कौड़ी बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। अगर जीवन में मूल्य नहीं है तो वो कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं। तो इसीलिए बुद्धि योग कहते हैं, ताकि बुद्धि मन को दिशा दे और मन ईश्वर की ओर लगे और मूल्यों को महत्व दे, तब जीवन में समत्वता आएगी, एक बैलेंस आएगा, सुंदर जीवन बन जाएगा और हम सच्चे योगी कहलाएंगे। तो राजयोग क्या है? अपने आप को पहले आत्मा निश्चय करना है और फिर सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करना है। सर्व संबंधों से याद करना, जिसको कहेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर याद करना। अभी हम संबंधों का वर्णन जरूर करते हैं लेकिन संबंधों का अनुभव नहीं करते हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता हूँ। कैसे भूलेगा, वो तो माँ है ना उसकी। लेकिन परमात्मा याद नहीं आता ये क्यों कहते, भले माता पिता भी कहते हैं, क्योंकि सचमुच माँ का संबंध उनसे जुड़ा नहीं है जैसे लौकिक में माँ होती है। केवल वर्णन कर रहे हैं बस, और संबंध जुड़ा नहीं है इसीलिए शक्ति नहीं है। जैसे बिजली घर से अगर संबंध जुड़ा नहीं है तो करंट कैसे आएगा? बिजली घर से संबंध जुड़े तो करंट आएगा, क्यों नहीं आएगा? अवश्य कहीं ये करंट नहीं आ रहा है, शक्ति ईश्वर से नहीं मिल रही है और भिखारी बन के मांग रहे हैं, इतनी शक्ति तो देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, भिखारी बन के शक्ति मांग रहे हैं क्योंकि कनेक्शन कहीं कट गया है। वो सच्चा विश्वास न रहकर या तो अंधविश्वास हो गया है या तो बस टेकन फॉर ग्रांटेड, हम तो ठीक कर ही रहे हैं लेकिन अंतर में शक्ति नहीं है। इसीलिए वो संबंध को फिर से जोड़ना पड़ेगा जो कनेक्शन कट गया है। जैसे अभी बिजली जल रही है क्योंकि बिजली घर से बिजली है, पर अचानक अगर बिजली चली जाए और दूसरे हॉल में बिजली है पर यहाँ नहीं है, तो क्यों नहीं है? जरूर कहीं पर फ्यूज उड़ गया है। बिजली घर से तो आ रही है क्योंकि दूसरे मकान में है, तो इस मकान का जो फ्यूज होगा वो मीटर, उसके अंदर जो फ्यूज है वो उड़ गया है, उसको फिर से कनेक्ट करने की जरूरत है। अभी अभी हम रेडियो ऑन कर रहे थे, कोई रेडियो स्टेशन था, अभी अभी चला गया, क्या हुआ? कहीं तार हिल गई, हाँ वो जो सुई है वो हिल गई है। हिल गई तो फिर से ठीक करना पड़ेगा ताकि वो आवाज हम फिर से सुन सकें। कई बार सिग्नल, टीवी का सिग्नल ही नहीं आता है क्योंकि वो जो डिश है उसमें कुछ फेर आ गया, इसको फिर ठीक करना पड़े। तो इसी प्रकार क्यों हमारा हमें शक्ति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो कहीं कनेक्शन कट गया। तो मन कैसे लगे परमात्मा में, हम दुनियावी एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी वस्तु में मन कब लगता है, उसके कुछ आधार होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं तो मन उसमें लगेगा भी कैसे। इसीलिए मन के कहीं भी जाने के लिए कुछ आधार होते हैं, और वो आधार क्या है उनको हम समझेंगे। पहले तो आत्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, मन को स्वच्छ करना है, ये तो बहुत जरूरी भी है, इसलिए आपको आज सवेरे बताया। लेकिन मन परमात्मा में सहज लग जाए उसके लिए आवश्यकता है कि जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, अब वो बच्चा भी इंसान है, पिता भी इंसान है, देह है, तो वो देह समझ करके देहधारी को याद करता है। अब यहाँ आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है, तो मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जैसे किसी भी को भी याद करते हैं तो उसका कुछ आधार होता है, पहले उसका परिचय चाहिए, फिर उसके साथ कोई संबंध चाहिए तभी मन लगेगा, फिर तीसरा उसके साथ प्रेम चाहिए तभी मन लगेगा, और चौथा उनसे कुछ प्राप्ति होती रहे तो मन उससे हटेगा ही नहीं। अब ये चार मूल आधार हैं मन को कहीं भी जाने के लिए, पहले उसकी उसकी पहचान, परिचय, उसके साथ कोई संबंध, तीसरा उससे उससे प्यार, और चौथा उनसे कुछ प्राप्ति। अब ये चारों ही आधार हम ईश्वर के साथ लगाएं। पहला आधार है आत्मा और परमात्मा का परिचय, ये बहुत जरूरी है मन को परमात्मा में लगाने के लिए। फिर उसके बाद जो आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी संबंध है, जो कहीं टूट गया है उसको फिर से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, आप देखेंगे तार को जोड़ने के लिए रबर को हटाना पड़ता है, और तांबे को तांबे से जोड़ते हैं, कॉपर टू कॉपर। ट्यूनिंग भी करते हैं तो जो रेडियो स्टेशन हमें चाहिए वो रेडियो स्टेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है, कौन सा वेवलेंथ है, कौन सा मीटर बैंड है, वो हमको पहले से मालूम अगर हो तो हमको बहुत सारा टाइम सुई घुमाने की जरूरत नहीं, बस उसी स्थान पर रखेंगे और हमको वो रेडियो स्टेशन की आवाज मिलेगी। तो ट्यूनिंग चाहिए। तो इसलिए परमात्मा से संबंध कहीं टूट गया है तो उसको फिर से जोड़ने के लिए ट्यूनिंग करनी है, इस रबर को हटाना होगा। ये बैड कंडक्टर है, परमात्मा से शक्ति लेनी नहीं देगा ये शरीर। जैसे रबर को हटाना पड़ता है तार को जोड़ने के लिए, रबर जुड़ा हुआ होगा तो करंट नहीं आएगा। इसीलिए संबंध कैसे जो टूट गया उसको जोड़ना है वो भी देखेंगे। फिर ईश्वर से सच्चा प्यार चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ तो त्याग होता है, वहाँ तो समर्पण मयता होती है। एक तरफा नहीं होता है प्यार, दोनों तरफा चाहिए। परमात्मा तो हमको कितना प्यार देते हैं पर हमारे अंदर तो स्वार्थ है, ये सब जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है ये उसका प्यार है, लेकिन हम इसको किस प्रकार यूज करते हैं ईश्वर का समझ करके, वो हमारा प्यार ईश्वर के प्रति जताता है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा कि भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम इसको कैसे लाते हैं, इसको यूज करते, वो हमारा प्यार ईश्वर के लिए होगा। What I have is God's property to me, and what I make of it will be my return to God. ईश्वर को हम क्या रिटर्न दें? ईश्वर हमसे कुछ नहीं और चाहता, उनको ये संसार की चीजें नहीं चाहिए, वो उसने ही तो दी है। लेकिन जो त्रुटियां आ गई है हमारे जीवन में, वही परमात्मा को चाहिए। ये देह अभिमान चाहिए, ये विकार चाहिए, ये रबर को हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे हटाएंगे वो भी देखेंगे। और फिर जो प्राप्तियां हमें परमात्मा से मिलती है, उनको हम एक सुंदर रूप से अनुभव करेंगे। तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मन लगाएं कैसे, पर ये कहेंगे अभी तो मन हटेगा ही नहीं, इतना लग जाता है परमात्मा में। पर उसके लिए हमें परमात्मा और आत्मा का सही परिचय का चिंतन करना होगा, अपने अंदर में दोहराना होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ। इससे हमारा देह अभिमान टूटेगा। और जितना हम इसका चिंतन करेंगे उतना आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, देह से न्यारे बनते जाएंगे। और मैं आत्मा या भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, तो आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएगी। रोज सवेरे स्त्रियां नहा धो के तिलक लगाती है, तो तिलक लगाते समय ये सोचे ये मुझ आत्मा का तिलक है, मैं आत्मा यहाँ निवास करने वाली हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। फिर आत्मा को अपना घर भी याद आए कि मैं आत्मा तो उस परम धाम की वासी हूँ, इस सृष्टि पर तो मैं मेहमान हूँ, एक एक्टर हूँ। अब ये जैसे जैसे मन को चिंतन देते जाएंगे, मन आत्मिक स्थिति में स्थित होगा, फिर मन परमात्मा में भी लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा भी एक आत्मा है, वो एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ सितारा है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, बाबा माना पिता। तो जब हम शिव कहते हैं, उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा को कहते हैं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है। बिंदु में सिंधु की शक्ति है, ये कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं, ज्योमेट्री एक विषय है मैथमेटिक्स में, उसमें पॉइंट की डेफिनेशन दी जाती है और इन्फिनिटी की भी डेफिनेशन दी जाती है। पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, नो लेंथ नो ब्रेथ एंड येट इट एग्जिस्ट, फिर भी उसका अस्तित्व है। बिंदु का, पॉइंट का कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, नो मेजरमेंट, फिर भी उसका अस्तित्व है। उसी प्रकार इटर्निटी, इन्फिनिटी, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस वहां मिलती है। तो परमात्मा भी रूप में बिंदु है पर गुणों में सिंधु है, सागर है, बेअंत है। अब उस बिंदु में सिंधु, जिसको निराकार स्वरूप का, यानी कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन बिंदु और सिंधु है, ये उसका निराकार स्वरूप है और सर्व गुणों का सागर है। कई उनको निर्गुण कहते हैं, तो निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि कोई गुण ही नहीं है, पर निर्गुण का मतलब है कि जो परमात्मा के गुण है वो प्रकृति के गुणों से अलग है। प्रकृति में तीन गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति इन तीन गुणों में विचरण करती है, लेकिन परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए त्रिगुणातीत उनको कहते हैं। और त्रिगुणातीत को ही निर्गुण कहा, जो प्रकृति के गुणों में नहीं आता। लेकिन उनकी स्तुति सागर से की जाती है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। इतनी महिमा है, जो कहा जाता है सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती, शारदा देवी, विद्या की देवी, ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी पूरी न हो, पर किसकी? वो कौन है जो बिंदु में सिंधु है, और वो ही सदा शिव कल्याणकारी है, जो परम धाम का निवासी है, हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। तो कैसे मन को उसमें लगाना, उसके लिए कुछ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अभी तक ट्यूनिंग नहीं थी, हम क्या समझते थे, परमात्मा तो निर्गुण निरंजन निराकार है, कोई नाम रूप नहीं है, और मैं तो फलाना नाम, फलाना धर्म, जाति, भाषा, व्यवसाय, फलाना फलाना, बड़े लेबल्स लगा लिए अपने ऊपर। अब ये लेबल्स मेरे नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूँ। तो सबसे पहले मैं आत्मा और परम आत्मा की संतान, दोनों का रूप एक जैसा, आत्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो, दोनों का साक्षात्कार एक ज्योति रूप में ही होगा, इसलिए स्वरूप भी एक जैसा है। लेकिन उनको परम आत्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में वो सबसे ऊंचा है। कोई लंबाई चौड़ाई में आत्मा से बड़ा है ऐसी बात नहीं है। आत्मा भी अति सूक्ष्म रूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु, इसीलिए दोनों वो आत्मा ही है। लेकिन परम प्लस आत्मा, सुप्रीम सोल, तो इसलिए रूप में समानता है, फिर धाम में भी समानता है, एक ही धाम के वासी हैं हम। हम भी इस दुनिया में मेहमान हैं, परमात्मा भी मेहमान बन के आता है इस संसार में। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, तो कहाँ से आते हैं? वो धाम है उनका, जो हम आत्माओं का भी धाम है, जो पांच तत्वों से परे का धाम है, जिसके लिए भगवान ने एड्रेस भी बताई है, जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, वो मेरा परम धाम है। आत्मा भी उसी धाम की वासी है, तो आपका ही वो घर है। उस घर में जाने के लिए निमंत्रण ईश्वर से मत मांगो, मन से चले जाओ, वो आपका ही घर है, अपना घर, इसीलिए एक ही घर है। हाँ, कई कहते कैसे जाएं उस घर में, हमने तो वो घर देखा नहीं है। कैसे नहीं देखा है? आप वहीं से तो आए हो इस दुनिया में, वहीं से आए हो तो देखा क्यों नहीं होगा? पर ये आंखें थोड़ी देख सकती है उस घर को, तो आत्मा तो जानती है ना। तो इसीलिए एक ही घर है मेरा, उस धाम में पहुंच जाओ, अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूँ। एक ही घर है। अभी तक वो एक ही घर नहीं समझा, हमने क्या समझा, परमात्मा तो कहीं सातवें आसमान में और मैं तो इस धरती का एक प्राणी हूँ। अब धरती के प्राणी हम नहीं है, वो तो शरीर है, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो परमात्मा आत्म पंछी हूँ। आत्म पंछी तो उड़ता है, उसका धाम तो बहुत दूर है, इसीलिए एक ही घर है। फिर एक जैसे ही गुण है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के वही गुण है, इसलिए गुण मांगे नहीं जाते हैं। किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपके अंदर बहुत शांति है, थोड़ी मेरे को दे दो शांति, मुझे दे दो, ये थोड़ी मांगेगी शांति, प्यार दो, मांगा थोड़ी जाता है, ये दिया जाता है। शांति मांगी नहीं जाती है, वो उनसे प्रेरणा ली जाती है कि देखो ये कितना शांत है, तो मैं भी ऐसे शांत रहूं। इनमें ये गुण है, ये हर्षित मुख है, मैं भी हर्षित मुख रहूं। मैं आपको अपना हर्षित मुख पना कैसे दूंगी? आप प्रेरणा से लेंगे। आप सूरज को ये तो नहीं कहेंगे सूरज मुझे अपनी किरण दो, वो तो दे रहा है। गुलाब के फूल को ये तो नहीं कहेंगे कि हे गुलाब का फूल मुझे सुगंध दो अपनी, बस नाक हमको हमारा खुला हो तो क्यों नहीं सुगंध आएगी? नाक ही बंद है तो कैसे आएगी सुगंध? खिड़की दरवाजे बंद है तो सूरज की किरण कैसे आएगी? तो ये अज्ञान का पर्दा हटाना होगा। शांति मांगो नहीं, शक्ति मांगो नहीं, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, इसीलिए परमात्मा से बातें करो। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ और खो जाओ। इसको कहेंगे आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, जैसे किसी के गुणों में खो गए। अब ये अनुभूति हम तब कर सकेंगे जब ये तीन बातों की समानता का चिंतन करेंगे। ये है ट्यूनिंग, ट्यूनिंग करना। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, दोनों ही ज्योति स्वरूप। मैं आत्मा परमधाम वासी, परमात्मा भी परमधाम वासी। परमात्मा शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप हूँ, अधिकारी हूँ, क्योंकि मेरा भी वही गुण है। इसलिए जब हम ये चिंतन करते हैं तो हम जैसे एक यात्रा पर हैं, राजयोग एक यात्रा के रूप में है। जैसे यात्रा में जाते हैं तो एक लक्ष्य होता है, तो इस राजयोग में एक यात्रा के समान है जिसमें हमको लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य नहीं है कि परमात्मा तक पहुंचना है, ये लक्ष्य नहीं है। परमात्मा तो मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही इस यात्रा में है, वो तो साथी है मेरा, मैं अकेला नहीं हूँ। इसीलिए कहते हैं जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, क्योंकि साथी साथ है ईश्वर मेरे। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। तो अगर परमात्मा को सदा साथ रखो तो ये विघ्न जो आपके जीवन में आते हैं वो विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान आपके साथ है। लेकिन उसके लिए ट्यूनिंग जरूर करनी पड़ेगी, और वो ट्यूनिंग क्या है, जो पहला कदम है इनिशिएशन, मन को आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन में व्यस्त करना। ये उनको भोजन देना है, मन को शक्ति भरेंगे आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने से। यही मंत्र है, मंत्र कोई शब्द नहीं है जो रटना है आपको। मंत्र का वास्तव में अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा, कोई राय कोई सलाह। और मंत्र शब्द से मंत्री शब्द आया, जो सलाहकार है, राजाओं के सलाहकार होते थे पहले जमाने में, जो राजा को सलाह देते थे। अभी मिनिस्टर्स बन गए, ये सब प्रधानमंत्री के सलाहकार ही है जो मदद करते हैं उनको, यही कहेंगे। तो इसीलिए मंत्र माना मन को बुद्धि के द्वारा सलाह मिले, राय मिले। मन ये सोचे, मन ये सोचे, क्या सोचो, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो इसको कहेंगे आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन, जिससे मन का शुद्धिकरण होता है। फिर दूसरा कदम है अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करो, ये रूढ़िहान करना, जिसको ही मेडिटेशन कहते हैं। माना परमात्मा के साथ बातें करो ना, पर उसमें कुछ मांगना नहीं है, दिल से धन्यवाद करना है, दिल से प्रतिज्ञा करनी है अपने आप को बदलने की, गुणों का अधिकार दिल से रखना है, कोई कमी कमजोरी वो ईश्वर के आगे समर्पण करनी है, भगवान वही मांगते हैं। तो आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति इतना प्यार जागेगा, जो आप महसूस करेंगे कि आत्मा शुद्धि होते होते मन उसमें खोने लगता है। और फिर तीसरी अवस्था आती है जिसको एकाग्रता की अवस्था कहते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में खो जाती हूँ, और जैसे खोती जाती हूँ फिर चौथी स्टेज है रियलाइजेशन, वो अनुभूति, उस गुण का संपूर्ण स्वरूप आत्मा अपने अंदर अनुभव करने लगती है। इसी को ही कहा गया कि आत्मा परमात्मा बन जाती है। परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पद नहीं है कि हम जाके बनेंगे। आपके माता पिता सदा आपके माता पिता है, आपका शिक्षक सदा ही शिक्षक है, आपका गुरु सदा ही गुरु है। तो परमात्मा हमारे सदा ही माता पिता, सदा ही शिक्षक, सदा ही सतगुरु है। लेकिन परमात्मा के गुणों को हम अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए पहला कदम आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन, इससे क्या होगा, आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, ये पॉजिटिव एनर्जी जो आपके शुद्ध विचारों की है वो चारों ओर आप फैलाएंगे, आपका वातावरण भी आप शुद्ध कर सकेंगे। और फिर अंदर ही अंदर परमात्मा को मन की आंख से देखो, परम धाम में उस अखंड ज्योति के महतत्व में मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और उनसे सर्व संबंध जोड़ना है, क्योंकि परमात्मा वो परम शक्ति है जिसके साथ हमारे सब संबंध है। तो माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, यहाँ तक कि आप परमात्मा को बच्चा भी बना सकते हो। सती अनसुया के लिए दिखाते हैं कि उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चे रूप में स्वीकार किया। परमात्मा आपका बच्चा बन सकता है, और कैसे आपकी सेवा करेगा ये भी बहुत अनुभव हमारे होते हैं। अब ये इसका बहुत विस्तार है, आप सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना। और जैसे हम परमात्मा से सब संबंध जोड़ते हैं, उनसे ही बातें करते हैं, उनमें ही विश्वास रखते हैं, हमारे अंदर से भय खत्म हो जाता है। हम भगवान से डरते नहीं हैं, लेकिन सच्ची प्रीत करना जानते हैं। उनसे सिक्योरिटी की अनुभूति होती है, सुरक्षा की अनुभूति होती है, वो हमारे साथ साथ हैं, और साथ साथ शक्ति का अनुभव होने लगता है। और ये जैसे हम महसूस करते हैं तो हमारी अंदर की एकाग्रता बढ़ती है। इस एकाग्रता में हम अनुभव करते हैं कि कैसे हमारे अंदर के जो पाप हैं वो सब दगद होते हैं। इसीलिए परमात्मा के माँ वाक्य हैं, तो मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ये राजयोग अग्नि का काम करता है। जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं, तो वो फोकल पॉइंट पर वो किरणें जब पड़ती है तो उस सूरज का प्रतिबिंब वहाँ बन जाता है, और वो प्रतिबिंब इतना शक्तिशाली होता है जो वहाँ से आग निकलने लगती है, क्योंकि एकाग्र किया, किरणों को एकाग्र किया। तो ये भी परमात्मा को हम मन में ऐसे प्रेम से याद करके अपने संकल्पों को उस बिंदु पर एकाग्र करते हैं, और उस एकाग्रता की शक्ति से हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते जाते हैं। और फिर वो ऐसी अनुभूति होती है जैसे परमात्मा का गुण वो हमें प्राप्त हुआ संपूर्ण रूप से। बस ये अनुभूति हम राजयोग के अंदर करते हैं, और ऐसे लगता है जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो गई। अब बैटरी चार्ज हो गई उसको फिर यूज करो, तो जब काम करो काम करके फिर 5 मिनट बैठ जाओ, हर घंटे घंटे 1 मिनट बैठ जाओ, 1 घंटे में 1 मिनट भी अगर आपने वो राजयोग का अभ्यास किया, देह से न्यारे हो जाओ, मन बुद्धि परमात्मा में लग जाए, उनसे सब संबंध जोड़ रहे हैं, उनके गुणों का चिंतन वो अनुभूति कर रहे हैं, 1 मिनट ही सही, आपको फिर 1 घंटे के लिए आपकी बैटरी चार्ज ये आप अनुभव करेंगे। और आप महसूस करेंगे कि कैसे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप आत्म चिंतन करेंगे, आत्म निरीक्षण करेंगे, आत्म विश्लेषण करेंगे, ये सब आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। तो उसी रूप से आपका मन परमात्मा में भी लगना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी स्मृति, ये सब बदलते जाएंगे। जैसे अग्नि में कोई चीज पड़ी वो बदल जाती है, ये आत्मा का शुद्धिकरण होता जाएगा, और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में वो परिवर्तन होगा, जिससे आप में परिवर्तन तो आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, देश में, जिससे विश्व में भी होगा। इसीलिए हम लोग एक नारा देते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, क्योंकि आप अपने अंदर के जो नेगेटिव विचार है उनको खत्म करते हैं, पॉजिटिव विचार मन में लाते हैं, और धीरे धीरे आत्मिक स्थिति बनती जाती है और परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है। तो चलिए अब हम 5-7 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, बैठेंगे उसी स्थिति में, ये लाल प्रकाश हमें संकेत देगा कि अब इस दुनिया के विचारों को स्टॉप, इन विचारों को मन में मत लाओ और एक परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। वो निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूँ। मैं परम धाम की निवासी हूँ, परमात्मा भी उसी धाम का वासी है। तो चलिए सीधा बैठेंगे और मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अंतर मन में खुशी लाइए, एक नशा चढ़ाइए। सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के, नाम खुमारी नानिका चढ़ी रहे दिन रात। ईश्वर का नशा ये दिन रात चढ़ाओ कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा सच्चा साथी कौन है, मुझे कहाँ जाना है। और आत्मा अपने आप को उत्तर देती जाए और खुशी बढ़ती जाए, नशा चढ़ता जाए। अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ। दिव्य ज्योति हूँ, अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रकृति के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। महसूस करे अपने आप को प्रकृति के मध्य चमक रहा हूँ, दो नैनों के बीच में आज्ञा चक्र पर मेरा तीसरा नेत्र खुला है, मैं आत्मा खुद को देख रही हूँ, एक चमकता हुआ सितारा। ये शरीर पंच तत्वों का है, ये तो विनाशी है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी। ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है, जिन वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूं। मेरा मूल वतन पांच तत्वों से पार है। अब मन और बुद्धि के पंखों द्वारा एक उड़ान भरिए, आत्म पंछी उड़कर अपने वतन में पहुंच जाए मन बुद्धि द्वारा। मन की आंख उस परम धाम में खुद को देखे जो अखंड ज्योति का एक महतत्व है, और उस सुनहरे लाल प्रकाश के महतत्व में मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूँ, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। उस परम शक्तिवान सर्वोच्च शक्ति सदा शिव सत्यम शिव। शिवम सुंदरम, उनके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। शिव पिता, आप ही मेरे मात पिता, बंधु सखा, स्वामी और सतगुरु हो। आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा, आपकी संतान, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। चिंतन कीजिए कितनी शांत हूँ। शांति तो मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति धाम मुझ आत्मा का मूल वतन है। शांति के सागर मुझ आत्मा के परम पिता हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ। खो जाइए शांति के सागर में, जैसे बूंद सागर में समा जाती और अनुभव कीजिए शांति के अनंत सागर को। मन एकदम शांत हो जाए और शांति की शक्ति से भरपूर हो जाए। निर्संकल्प हो जाए। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। हल्की हूँ, न्यारी हूँ। शांत हूँ, शक्ति रूप हूँ। आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचाने और परमात्मा के एक एक गुण में खो जाए। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई। और फिर वापस लौटे। परमात्म प्यार का अनुभव करें और उस प्रेम स्वरूप की स्थिति में फिर से वापस लौटे साकारी दुनिया में, लेकिन ईश्वर के प्रेम से भरपूर होकर, शांति की शक्ति से भरपूर होकर, और फिर से कर्म में लग जाए और मन वचन कर्म से औरों को भी शक्ति प्रदान करे। तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे। ओम शांति, शांति। शांत।